السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لیلۃ القدر کی تلاش میں یہ راتیں گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا، اپنے نبی کو ایک دفعہ بتایا، اس کے بعد اس کا علم اٹھا لیا. اس سے بھی آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر بتا دیتا تو صرف ایک ہی رات سب عبادت کرتے اور کوئی بھی باقی راتوں میں نہ جاگتا. لیکن جب 10 راتیں بتا دی گئیں یا ان میں بھی 5 راتوں کی فضیلت بتا دی گئی، تو کم از کم کوئی بندہ 5 راتوں میں تو اس کو ضرور تلاش کرے گا، اور جو بہت زیادہ احتیاط رکھنا چاہتے ہیں اور کسی قیمت پہ بھی اس کو نہیں کھونا چاہتے، کسی قیمت پہ بھی، ناٹ ایٹ اینی کاسٹ، اور جو عید پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر مل گئی، ہم نے پا لی، وہ چاہے کوئی بھی تاریخ ہو، وہ 21ویں ہو، وہ 23ویں ہو، وہ جو بھی تاریخ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں. مگر ان کو تو یقینی طور پہ مل گئی جنہوں نے اس آخری عشرے کو اتنا قیمتی جانا کہ اس کی ہر رات میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے. تو لہٰذا یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ کتنے زیادہ سیریس ہیں اس کے بارے میں، ہم لوگ کتنی زیادہ چاہت رکھتے ہیں، ہماری کتنی تڑپ ہے کہ بس ہمیں یہ رات مل جائے، ہم کسی قیمت پہ اس کو کھونا نہیں چاہتے، یا پھر اٹس اوکے. تو لہٰذا اس چیز کو بہت دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا کیا چاہتے ہیں، انشاءاللہ. اچھا، اب ویسے تو گناہوں سے ویسے ہی بچنا چاہیے، مگر ان بابرکت راتوں میں بہت زیادہ ہم کوشش کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان راتوں کی برکتوں سے ہمیں محروم کر دے. لیکن جیسے اجر بہت زیادہ ہے نا، اسی طرح گناہ کی سزا بھی زیادہ ہے. گناہ لکھا تو ایک ہی جائے گا، مگر اس کی سیریسنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو جب بندہ رات میں اکیلا بیٹھتا ہے تو کئی طرح کے خیالات بھی آتے ہیں، کئی طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، اس وقت بھی اپنے آپ کو یہ بات بار بار یاد دلائی جائے کہ میں اس وقت لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھی ہوں، اور میں اس مبارک رات کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی، اور میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف فوکس کروں. تو اس غرض سے جب آپ بیٹھیں گے اور اسی غرض سے آپ جاگیں گے، تو انشاءاللہ تعالی گناہ سے بھی بچ جائیں گے. اور کوشش کریں کہ یا تو آپ قیام میں زیادہ قرآن پڑھیں، یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اگر قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ ہی رکھیں تو اچھا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ ہے ہی قرآن کا مہینہ، اس میں ہی قرآن نہ پڑھا تو پھر اور کب پڑھیں گے. جیسے امام اوزائی فرماتے ہیں، اس نے طویل قیام اللیل کیا نا، طویل کیا یعنی لمبا. اور آپ کو میں نے جیسے طریقہ بھی بتایا کہ آپ قرآن پاک کو کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں قیام اللیل میں. تو لیکن فرمایا جس نے طویل قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پیشی کو اس کے لیے آسان کر دے گا. تو لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں، جلدی جلدی فارغ ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو سر سے اتارنے والا کام کریں اور اس کو بس گنتی کے کریں کہ ہم نے اتنے تراوی یا ہم نے قیام میں اتنے بس رکعتیں کرنی ہیں، یہ نہ کریں، بلکہ اس کو ایسے سمجھیں کہ میں جتنی دیر بھی کھڑی ہو سکتی ہوں. آپ کی، اب ہر ایک بندے کی اپنی طاقت اور ہمت کے اوپر ہے کہ وہ کتنی دیر کا قیام کر سکتا ہے. और बस कुरान के साथ जैसे हम दिन में ताल्लुक रखते हैं, इन रातों में ताल्लुक रखना है, यानी इन रातों में ज्यादा करना है कुरान को। आपने देखा उस्मान रजी अल्लाह तआला के बारे में, आपने पढ़ा है कि कितना ज्यादा उनको कुरान पाक का शौक होता था, इतना शौक था उनको, उनकी जिंदगी में हमेशा कुरान आप नुमाया देखेंगे उनकी खसूसियात में। हत्ता कि जब बागियों ने उनको शहीद करने का इरादा किया और उनके ऊपर हमला करने के लिए आए, तो तब भी वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। और सोचे इसी हाल में उनको शहीद किया गया, तो कयामत में भी तो इसी हाल में उठेंगे ना कि कुरान सामने होगा और तिलावत कर रहे होंगे। तो जो जिस हाल के अंदर फौत होता है, फिर कयामत के दिन उसी हाल में उठाया जाता है। तो सोचें तिलावत कुरान का अजर उनकी शहादत से लेकर कयामत तक उनको मिलता रहेगा। लिहाजा हम जो चीज़ भी चाहते हैं ना कि इस हालत में मुझे मौत आए, उस अमल को आप ज्यादा कर दीजिए, तो उनके लिए कितना बड़ा एजाज है कि वो कुरान की तिलावत में शहीद हुए। तो ये कुरान पाक की बड़ी बरकात है, और ये महीना ही चूंकि कुरान पाक की तिलावत और इसको समझने और इसके बाद वक्त लगाने का है, तो इसको ज्यादा ही तवज्जो दें। ये ना सोचें कि मैंने बस अब ख़त्म कर लिया, अब तो बस फारिग हो गए। जो लोग ख़त्म कर लेते हैं समझते हैं कि बस काम हमारा ओवर हो गया। नहीं, अब इस महीने में तो आपको मैंने बताया कि हर अमल का अजर कितने गुना बढ़ जाता है, और जब अजर इतना बढ़ गया तो हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि बस मैंने इतना पढ़ना है। किसी ने 25वीं को ख़त्म कर लिया, किसी ने 27वीं को ख़त्म कर लिया, तो अब फारिग होके बैठ गया। नहीं, बल्कि इसको ये सोचिए कि इसमें मैं ज़्यादा सदा करूँ, कोई बात नहीं, आप दोबारा शुरू कर दें। नहीं भी ख़त्म होगा, रमज़ान ओवर हो जाएगा, नहीं ख़त्म होगा, कोई मसला नहीं, आप उसके बाद भी कंटिन्यू रखें। लेकिन सोचिए कितने दिन की और कितने सारे पारे जो आप तिलावत कर लेंगे, उनका अजर तो आपको मिल जाएगा। तो उसी स्पीड के साथ लगे रहें, या तो हमारी स्पीड ही बिल्कुल कम हो जाती है, या बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और कामों में लग जाते हैं कि आप तो ईद की तैयारियां करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको वाकई इतना महबूब रखें, इतना इससे मोहब्बत करें कि बाकी दिनों में जितना पढ़ नहीं भी सकते हम, तो इन दिनों में अपनी तिलावत कुरान को बढ़ाए रखें जब तक रमज़ान नहीं ख़त्म होता। अल्लाह ताला हमसे कबूल करे ये सब, हमारा पढ़ना, हमारा इसके साथ वक्त लगाना, इसको सीखना, ये सब कबूल फरमा ले हमसे, और इसकी तिलावत भी सुनना। जो तिलावत सुन रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह हमारे सब हम रोज़े रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे सबके रोज़ों के अजर में फ़र्क है। और ये फ़र्क कैसे पैदा होता है, ये फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ ये है कि किसके रोज़े में अल्लाह ताला का जिक्र कितना है। कुरान पाक भी अल्लाह ताला का जिक्र है, मगर आप देखें उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि आप थक जाते हैं, फिर पढ़ के भी इंसान थक जाता है, आप फिर उसके बाद रख देते हैं, कंटिन्यूसली नहीं आप पढ़ सकते कि आप 15-15 पारे एक दिन में पढ़ लें, 10-10 पारे एक दिन में पढ़ लें, पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जिक्र ऐसी चीज़ है जो पॉसिबल है, और क्या चीज़ डिफरेंस मेक करेगी सबके अजर में, कि जिसके रोज़े में अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा हो, कसरत हो, तो जिक्र को बढ़ा दीजिए, ये डोज बढ़ा दें, यानी सारे दिन में आप चलते फिरते जिक्र करते रहेंगे, तो आप ये देखिए कि रोज़े का आपका अजर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें समझ लें, इससे आप डेकोरेट कर रहे हैं अपने रोजे को, रोजा इटसेल्फ एक इबादत है, उसके ऊपर आप कितनी एक और अजीम इबादत का इजाफा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल में से अच्छा अमल ना बताऊं जो तुम्हारे मालिक यहां बेहतर और पाकीजा है, तुम्हारे दर्जात में सबसे बुलंद है, तुम्हारे सोने और चांदी की खैरात करने से भी अफजल है। सोना चांदी हम कहाँ खैरात करते हैं, लेकिन ये उससे भी अफजल है अगर करें भी तो हम। और तुम्हारे दुश्मनों के साथ जिहाद करने से भी बेहतर है, चाहे तुम्हें उन्हें कत्ल करो और वो तुम्हें कत्ल कर दे, उससे भी बेहतर है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, वो कौन सा अमल है या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह का जिक्र है। तो आप देख लें कि जिक्र कितना आसान है। अभी जितने भी हम जिक्र अजकार आजकल भी कर रहे हैं तो इतने आसान हैं, इनकी आदत हम अगर बना लें तो। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो हदीस से भी पता चलता है कि किसी ने पूछ ही लिया कि रोजेदारों में से किसका सवाब ज्यादा है, आपने फरमाया उनमें से जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है। फिर वो बार बार पूछता रहा किसका ज्यादा है, तो आप यही फरमाते रहे। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है वो तमाम नेकियां ले गया, यानी तमाम भलाइयां उसके हिस्से में आ गई। अल्लाह अकबर। तो ये भलाइयां समेटने का एक बहुत अच्छा जरिया है और इजीएस्ट है। या आप लेटे में आप फिर भी जिक्र कर रहे हैं, आप बगैर वजू के हैं फिर भी जिक्र कर रहे हैं, अब सुभान अल्लाह कहने में कितनी ताकत लग गई मेरी, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कहने में कितनी ताकत लग गई, मीज़ान उधर भर रहे हैं और नेकियों में कितना इजाफा हो रहा है और आसमान और ज़मीन के दरमियान का खला भर गया, तो मुझे क्या इतना मुश्किल है बोलना ये। लेकिन गफलत होती है ना, बस ऐसे ही नहीं कहना, बोलना ही नहीं, इधर उधर की बातें करते रहना, लेकिन ये नहीं करना। तो ऐसे नहीं हमने करना, कम अज़ कम इन दिनों में हम ज़्यादा जिक्र को बढ़ा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब तक बंदा मेरा जिक्र करता रहता है और मेरी याद में उसके होंठ हिलते रहते हैं, मैं उस वक्त तक अपने बंदे के साथ ही रहता हूँ। तो अल्लाह ताला का साथ आपको मिल जाता है। अल्लाह हू अकबर। तो कहते हैं कि ये जो इवन नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये भी इस चीज़ को महसूस करती हैं कि कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है। जैसे अभी हम दीवारों के बीच में बैठे हुए, छत है हमारे सर पे, इन चीज़ों को भी महसूस होता है कि अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पत्थरों की भी तस्बीह सुनवाई थी सहाबा करो, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ों में इतना शऊर है। तो हदीस में आता है, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से पूछता है कि आज अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बंदा तुझ पे से गुजरा है? अगर वो कहता है ना हाँ, तो वो कहता है तुझे बशार हो, तो मुबारक हो। इतना वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। अब कितने ही लोग गुजरते रहते हैं कहीं से भी और अल्लाह का जिक्र नहीं, खा रहे हैं पी रहे हैं अल्लाह का जिक्र नहीं। वो इस चीज़ को हमें मलहूज़े खातिर रखना है और इसकी तरफ तवज्जो करनी है कि हम कॉन्शियसली अल्लाह का जिक्र करें, कॉन्शियसली। ये नहीं कभी याद आ गया तो ठीक है, कभी नमाज पढ़ ली तो उसके बाद के अस्कार कर लिए, नहीं, सारा दिन में करें, चाहे आप पाकी में हैं या नापाकी में, अल्लाह ताला के जिक्र को ना छोड़ें। और ये वो अस्कार जो सबको ही आते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल वाले करने की कोई वो बात नहीं है कि वो मुश्किल ही करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। छोटे छोटे ये कलिमात हैं, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितने छोटे छोटे कलिमात हैं, दो दो वर्ड्स के हैं, तो इनमें तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इनको अपना मामूल बनाना है। चले हम चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ, से पहले दुआ सुनते हैं।
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء
चलते हैं अपने नए एपिसोड की तरफ, जन्नत और जहन्नुम के पुरफरीब रास्ते। मैं जन्नत के इस सख्त मुश्किल रास्ते पर आगे बढ़ रही थी कि मुझे एक तरफ बहुत बड़ा मजमा नज़र आया। कोई लगभग 200-250 लोग तो होंगे कि जो एक लंगर से खाना खा रहे थे, बड़े आराम से और बड़ी इज्जत के साथ उनके सामने खाना पेश किया जा रहा था। ना कोई धक्कम पेल थी, ना कोई इधर उधर भाग दौड़ थी, बहुत सुकून था, ना कोई शोर था। यूं लगता था यह रोज ही कोई यही एक्टिविटी होती रहती है, इसीलिए हर एक जानता था उसको खाना कहाँ से लेना है, उसको अपनी बारी का इंतज़ार कैसे करना है, और किसी को ये डर नहीं था कि ख़त्म हो जाएगा। बड़े तहम्मुल से लोग खाना खा रहे थे। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? मैं अभी इन्हीं सोचों में थी कि एक नौजवान आदमी पुरजोश अंदाज में एक कदरे उधेड़ उम्र के शख्स के गले लग गया और बोला, चाचा आप यहाँ? वो उधेड़ उम्र शख्स बोला, हाँ बेटा, गांव में अब गुजर औकात नहीं हो रही, महंगाई बहुत है, सोचा शहर में आकर किस्मत आजमाऊं। नौजवान बोला, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। बेटा ये सब क्या है, यहाँ क्या मुफ्त खाना मिलता है? यूं लगता था कि चाचा भी पहली दफा यहाँ आया है। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं इन्हीं सेठ साहब के पास काम करता हूँ, यहाँ मुफ्त खाना दिया जाता है और रोज़ाना की बेस पे कई 100 लोग आके यहाँ अपना पेट भरते हैं। ना किसी से उसका पता पूछा जाता है, ना नाम, ना नस्ल, ना रंग और ना जुबान, बस कोई भी भूखा आ जाए तो यहाँ पर ऑर्डर है कि उसको खाना दिया जाए, चाहे वो 10 रोटियाँ खा ले, उसको देना है। चाचा हैरत ज़दा रह गया और बोला, मगर इससे सेठ साहब को क्या मिलता है? इस बार नौजवान हंस दिया, चाचा अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो दूसरों का एहसास रखने वाले और लोगों से बदले की उम्मीद में काम नहीं करते, उनको बदला अल्लाह ही से चाहिए होता है। अब तो चाचा का हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया और वो बोला, आज के दौर में ऐसे लोग भी हैं क्या? इतने लोगों को खाना खिलाना लाखों का खर्चा होता होगा। हाँ चाचा, सेठ साहब का कहना है, इसकी परवाह ना करो, बस खिलाओ और किसी को वापस ना जाने दो, किसी को ये ना कहो कल आना, अब खाना खत्म हो गया। मैं तो सेठ साहब के घर में मुलाजमत करता हूँ, यहाँ तो आज ही आया हूँ, इनके घर में भी यही हाल है। कोई भी आ जाए, वो चाहे गरीब हो या अमीर, घर का मुलाजिम हो या बाहर से कोई आया, सेठ साहब हर तरह के लोगों के साथ यही रवैया रखते हैं, इनको खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देते। मैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी और हैरान हो रही थी, और मुझे वो हदीस याद आ गई कि जन्नत में सलामती के साथ जो कोई जाना चाहता हो तो वो सलाम किया करे, खाना खिलाया करे, रात को तहज्जुद पढ़ा करे, सिला रहमी करे। मेरे दिल की बात जैसे उसको पता चल गई। वो बोला, चाचा और ये इतने नेक सीरत हैं, हर एक के साथ नरम बात करने वाले, खाना खिलाने वाले, और मैं तो इनके घर का किचन संभालता हूँ, तो मुझे साहब का ऑर्डर है कि तहज्जुद के वक्त चाय मेरे कमरे में ला दिया करो, तो जब मैं चाय लेकर जाता हूँ तो मुसल्ले पर खड़े होते हैं, पता नहीं कितनी देर से उठे होते हैं और कब तक खड़े रहते हैं। चाचा सर हिलाते हुए बोला, इतने अमीर हो के भी? नौजवान बोला, पता नहीं, शायद इसीलिए अल्लाह ताला इनको नवाजता ही जा रहा है, और यहीं दुनिया में भी इतना दे रहा है, जो अल्लाह के बंदों की भूख मिटाने का सामान करते हैं और जिनमें इतनी आजजी होती है, फिर अल्लाह ताला उनके लिए कैसे खजानों के मुंह खोल देता है। चाचा तुम भी यहाँ काम से वापसी पर आकर खाना खा लिया करना। चाचा तो अपनी सोच में गुम था, बोला, बेटा जो खुले दिल से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह ताला भी उसको कैसे नवाजता है। लोग सोचते हैं वो हाथ तंग कर लेंगे तो मालदार हो जाएंगे, हालांकि वो ये नहीं जानते वो अल्लाह के रास्ते में जितना हाथ को खोलेंगे उतना अल्लाह उनको मालदार करेगा। वाकई इस शख्स का ये अमल तो इसको सलामती के साथ जन्नत में पहुंचा देगा। माल तो बहुत से लोगों के पास होता है, मगर दिल खोलकर इंसानों को खाना खिलाने का हौसला सब में नहीं होता। और इस बात का ताल्लुक माल से तो है ही नहीं, इसका ताल्लुक तो दिल से होता है। दिल बड़ा हो और ये यकीन हो कि देने वाला वो रब है, कोई मेरा रिस्क लूट नहीं सकता, तो इंसान को किसी को खिलाने में जरा भी मुश्किल नहीं होती। मैं जन्नत के इस रास्ते के मुसाफिरों को देख रही थी और यही सोच रही थी, अगर ये अपने इन्हीं तरीकों पर चलते रहे जिन पर ये इस वक्त हैं और इसी पर इनको मौत आ गई, तो वो सामने जन्नत इनकी मुंतजर है। हाँ, अगर इन्होंने ये रास्ते छोड़ दिए तो अलग बात है। मैं इस रास्ते से उतर कर अब एक और रास्ते की तरफ निकल खड़ी हुई, जो जहन्नुम का रास्ता था। जरा देखूं तो सही वहां क्या है। जन्नत का रास्ता तो बड़ा सख्त और बड़ा खौफनाक। देखते हैं कि अब ये रास्ता कैसा है। जब मैं उस रास्ते पर गई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। ये तो बड़ा सजा हुआ रास्ता था, बड़ा आसान सा था, यहाँ तो कोई ज्यादा मुश्किलात नजर नहीं आ रही थी। मैंने एक घर में झांका जिसमें बहुत सारी खवातीन कहके लगा रही थी, बहुत खुश लिबास, खुश मिजाज, हंसती बोलती, बहुत सारी खवातीन एक जगह जमा हुई हुई थी। ऐसा लगता था शायद कोई दावत है। वो बेपरवाही से बातें कर रही थी। एक बड़े जोशीले अंदाज में बोली, मेरे शौहर को तो ना ही पूछो, ये मेरा ही हौसला है उस आदमी के साथ गुजारा करने का, कभी इससे मैंने कोई सुख देखा ही नहीं, सर पर ही सवार रहता है, कहाँ जा रही हूँ कहाँ से आ रही हूँ, भाई मेरी मर्जी जहां मर्जी जाऊं, पता नहीं इसको क्या है। दूसरी कहने लगी, अरे तुम्हारा शौहर क्या होगा जो मेरा है, अभी अभी घर से निकलते वक्त ही उसने मेरा मूड खराब कर दिया। पूछने लगा, आज क्या पकाया, मैं क्या नौकर लगी हूँ, मुझे पार्टी पे आना था और वो कहीं बाहर से ऑर्डर कर सकता था, फिर ये कोई करने का सवाल रह गया। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये खवातीन कैसे इतनी बेबाकी से ये सब कह सकती हैं। बाकी खवातीन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। बस ये मर्द होते ही ऐसे हैं, दिमाग चाट जाते हैं, खुद हिल के कुछ काम नहीं करते। यूं लगता था हर एक दूसरे के मुकाबले में अपने शौहर की बुराई करने में आगे बढ़ना चाहती है। मैं देख रही थी ये कितनी नाशुक्री औरतें थीं, ये खा पी रही थीं, ऐश कर रही थीं शौहर के पैसों पर, मगर उनकी जुबानें इतनी नाशुक्री। एक जो कदरे समझदार लग रही थी बोली, अच्छा फिर नाराज नहीं हो जाते तुम्हारे हस्बैंड। पहली वाली तिनक के बोली, तो होते रहे नाराज, माय फुट, मुझे क्या परवाह है। बाकी सब खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो मैं अपने सामने देख रही थी कि औरतें कसरत से जहन्नुम में जाएंगी, इसकी एक वजह ये थी किशोरों की बहुत नाशुक्री करती। क्या इनको ये नहीं पता कि हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस औरत की तरफ देखेगा भी नहीं जो अपने शौहर की शुक्रगुजार नहीं हो। शुक्रगुजारी तो दूर की बात, ये तो उल्टा नाशुक्रियां कर रही हैं और इनको एहसास तक नहीं। इनको क्या ये पता नहीं कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो वालदैन के घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं इस इंतजार में कि उनकी कहीं शादी हो जाए। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि तुम इस बात को हमेशा अपनी निगाह में रखना कि तुम्हारा अपने खामिंद के साथ सलूक कैसा है, बेशक वही तुम्हारी जहन्नम है और वही तुम्हारी जन्नत है। इनमें से एक बोली, चलो पिज्जा खाने चलते हैं, एक नया रेस्टोरेंट खुला है, लेट्स गो। बाकी सब भी बड़ी खुशी से उठी, अपने पर्स थामे। उनमें से चंद एक ने वॉशरूम की तरफ रुख किया, गालिबन अपना मेकअप सही करने के लिए। बाकियों ने पर्स में से शीशा निकालकर अपनी लिपस्टिक फ्रेश की, बालों को जो पहले से ही दुरुस्त थे मजीद संवारा, और जैसे बैठी हुई थी वैसे ही उठ खड़ी हुई और घर से निकल गई। मैंने सोचा ये ऐसे कैसे जा सकती, ना हिजाब ना कोई चादर। इनमें से अक्सर ने तो बारीक से कपड़े पहने हुए थे जिससे सब झलक रहा था, मगर उनको जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो इसी बारीक लिबास में घर से निकली और लेटेस्ट फैशन के नाम पर बाज ने सर के ऊपर ऊंचे जूड़े बनाए हुए थे जैसे ऊंट की कोहान हो। मुझे उसको देख के वो हदीस याद आ गई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैंने ऐसी औरतें अभी तो नहीं देखी मगर वो आएंगी जिनके सर बख्ती ऊंटों की मानिंद होंगे, और उनके बारे में फरमाया था वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसी तरह वो भी जो लिबास पहनकर भी नंगी हों वो भी जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी। इन सब खवातीन ने ऐसे लिबास पहने हुए थे जो इतने चुस्त थे कि जिस्म की पूरी शेप नुमाया थी, फिगर पता चल रहा था। ये नंगी होने के ही तो मुतरातिफ था, मगर यूं लगता था इनको जरा बराबर भी परवाह नहीं। वो इसी तरह हंसती बोलती पिज्जा शॉप पहुंच गई। वो सब की सब बहुत टिप टॉप लग रही थी, मगर उन सबको ये फिक्र जरूर थी कि उनका मेकअप सही है या नहीं। बार बार शीशा निकाल के देखती थी। मैंने उनसे कहा, ये आप लोग क्या कर रही हैं, आपका सौदा सिर्फ चंद दिन की लज्जत के लिए, चंद दिन के बनने संवरने के लिए, ये हुसन और ये जवानी दिखाने के लिए, ये तो ढल जानी है। क्या इसको दिखाने का इस कदर शौक है कि इसकी खातिर आग का सौदा करने को तैयार हो चुकी हो? क्या आपको गवारा होगा कि आपकी जन्नत आपके हाथ से निकल जाए? क्या आपके लिए ये काबिले कबूल है कि आपका रब आपसे नाराज हो जाए और उसकी नाराजगी में आप चल फिर रही हो इस जमीन पे? मगर मेरी कोई भी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। पिज्जा आया और उन्होंने बगैर बिस्मिल्लाह कहे, किसी ने दाएं हाथ से उठाया और किसी ने बाएं से खाना शुरू कर दिया, और मुसलसल बातें हो रही हैं। दुनिया दुनिया और दुनिया, इसके सिवा कोई और मौजू नहीं था। मैंने बेबसी से उनकी तरफ देखा, काश मैं इनको सुना सकूं, काश मैं इनको बता सकूं। क्या अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल करते हुए भी इनको अल्लाह याद नहीं आ रहा? सिर्फ एक बार उनमें से एक ने कहा, अरे छोड़ो ये मौलवियों की बातें हैं, इनको तो सिवाय डराने के कुछ नहीं आता, जहन्नुम डरावे और बस यही। दूसरी सब उसकी बात सुन के हंस दी। दी इनकी यही वक्त थी इनके नजदीक, वो बजाहिर देखने में कितने मजे में लग रही थी। आखरत क्या होती है? दुनिया में अल्लाह ताला को राजी करना है? यहां पे रहने का मकसद क्या है? हम कहां से आए हैं और हम कहां जाने वाले हैं? इन सब बातों से उनको कोई गर्ज नहीं थी। ये बातें उनके लिए बहुत बेमानी सी थी। जो मर्द भी रेस्टोरेंट में दाखिल होते थे, वो एक बार इनकी तरफ जरूर नजर डालते थे। ऐसे लगता था रंग बिरंगी तितलियां बैठी हैं। ये मर्दों को रिझाने वाली थी, अपनी तरफ मायल करने वाली थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि ऐसी औरतें होंगी जो मर्दों को अपनी तरफ मायल करेंगी और खुद उनकी तरफ मायल होंगी। ये अपने हुस्न की, कपड़ों की, जीनत की नुमाइश करने वाली थी। मैंने देखा बुराई के लिखने वाले फरिश्ते कैसे इस वक्त मसरूफ अमल थे। तेजी से वो उनकी एक एक बात को नोट कर रहे थे और इनको शऊर ही नहीं था। जो मुंह में आ रहा था बोले चली जा रही थी, और उनके लिए ये बड़ा फन हो रहा था, लेकिन ये फन उनको कितना महंगा पड़ रहा था, इसकी इनको शायद परवाह भी नहीं थी। ये तो आग का सौदा था जो ये कर रही थी। दूर मुझे जहन्नुम के खौफनाक शोर दिखाई दे रहे थे, सुनाई दे रहे थे। यूं लगता था कोई बला है जो चिंगाड़ रही है। मुझे अभी तक जहन्नुम नजर नहीं आई थी, मगर उसकी दहशत, उसकी आवाज मेरा दिल दहरा रही थी। जिसकी आवाज इतनी खौफनाक है, वो खुद क्या चीज होगी? ये औरतों मत करो ये, मैं एक एक के करीब जाके कह रही थी, सुनो ये तुमको आग तक ले जाएगा। सुनो अल्लाह के हुक्मों को मान लो, खुद को बचा लो आग से। सुनो ये वर्थ नहीं है जो तुम कर रही हो, मत करो। मैं चीख रही थी और वो कह कह लगा रही थी। शदीद गम ने मुझे घेर लिया। मैं ऐसा क्या करूं कि इन तक मेरी आवाज पहुंच जाए? फिर मैंने सोचा मेरी आवाज ना भी पहुंचे तो कुरान और हदीस में ये सब बातें तो मौजूद हैं, उनकी आवाजें तो इनके इर्द गिर्द हैं, लेकिन क्या इन्होंने कभी इस चीज की परवाह की कि ये उन आवाजों को सुन लें? मैं कोई नई बात तो नहीं करने वाली थी, मैं उनको वही कुछ तो बताने वाली थी जो कुरान में और हदीस में इनके पास मौजूद है। मगर ये उसकी पुकार नहीं सुनती थी, या अपने कान ही बंद कर लेती थी। अगर सुनना चाहती और खुद को संवारना चाहती तो इनके लिए कुरान और हदीस ही बहुत बड़ा नज़ीर था, वार्नर था। मगर हाँ, वो उसी के लिए नसीहत बन सकता है जो रब के सामने खड़े होने से डरता हो, और जिसको ये याद ही ना हो, जैसे ये ख़वातीन, तो फिर कुरान और हदीस जितना मर्जी बड़ा खबरदार करने वाला हो, इससे जिंदगियां नहीं बदलती। यहाँ तक हमारा आज का एपिसोड था। अब हम जिन रातों से गुजर रहे हैं, इन रातों में भी हम सब के लिए भी ये बहुत सोचने की बात है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, वो रास्ता किधर को जा रहा है? वो जहन्नम की तरफ का रास्ता है या जन्नत की तरफ का? इसका आसान तरीका है बहुत जानने का भी। हम सोचेंगे ना कैसे हमें पता चले, या हम देख लें कुरान और हदीस की तालीमात से कि मेरा रास्ता उनसे टकरा रहा है या उनके मुताबिक है? अगर तो उनके मुताबिक है तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर टकरा रहा है, मैं किसी और तरफ चली हुई हूं और कुरान हदीस कुछ और कह रहा है, तो समझ लें जहन्नुम के रास्ते के राही बन चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिंदगी है बाकी, अभी सांस चल रही है, हम रास्ता बदल सकते हैं। जो हो चुका वो तो हो चुका, अब आगे क्या करना है ये हमें डिसाइड करना है, और बेस्ट टाइम है ये डिसाइड करने का, ये रमजान की रातें, कि मैंने इसी तरह कंटिन्यू करना है या मैंने खुद को चेंज करना है। क्या चाहते हैं हम, क्या कहते हैं आप, सोचें इसके ऊपर। फैसला तो आपने खुद ही करना है ना, क्योंकि नताइज तो बंदे को खुद ही भुगतने पड़ेंगे। तो जो भी फैसला करें फिर उसका नतीजा भुगतने को भी तैयार हो जाए, चाहे वो जहन्नुम की आग है या जन्नत का बाग है। हम में से अक्सरियत खुद को कुरान के आगे पेश करने से झिझकती है, डरती है। क्यों? कुरान ना सीखो, हम पता नहीं अमल करना पड़ जाएगा, पता नहीं क्या होगा, इस तरफ नहीं आना चाहते हम, पता ही नहीं करना चाहते कि हमारे रब का क्या हुक्म है, वो हमें क्या फरमा रहा है। क्यों जानते हैं? इसलिए कि हमें अच्छी तरह से पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन नफ्स इतना हमारे ऊपर हावी है, दुनिया इतनी दिमाग पे छाई हुई है, ऐसा नशा चढ़ा हुआ है इस दुनिया का कि ये सब छोड़ना चाहते ही नहीं है। इसीलिए तो फिर कुरान की तरफ आते भी नहीं है। कुरान की तरफ तो वो ही आएगा ना जो ये फैसला कर लेगा कि बस मैंने इसके मुताबिक चलना है, जिसका ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं। कुरान कुछ भी कहता रहे, मैंने तो वही करना जो मेरा दिल करता है, तो फिर वो क्यों कुरान की तरफ आएगा? फिर हाँ, कुरान पाक को सवाब की नीयत से रमजान में शायद एक आध दफा खत्म भी कर ले, मगर बाकी इससे कोई ताल्लुक रखना गवारा नहीं होगा फिर। इसलिए कि मैं गिल्टी फील करती हूँ, इसलिए कि मैं चलना चाहती हूँ उसी रास्ते पे जिसमें रंगीनियाँ हैं, जिसमें फन है। तो फिर जो बंदा ऐसा फैसला कर ले, फिर तो अल्लाह के पैगंबर भी आ जाएं तो उसको बदल नहीं सकते। तो हम फैसला करें, इन रातों में गौर व फिक्र करें कि हम किन के जैसे होना चाहते हैं, किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, और हमने जो गुनाहों की आग खुद जलाई हुई है उसको बुझाने के लिए इन दिनों में कोशिश शुरू करें। तो हमारी जो आज का जिक्र और दुआ है उसकी तरफ भी चलते हैं। जो हमारी आज की दुआ है, वो दुआ भी वो है जो सबसे मुश्किल घाटी है ना कयामत के दिन की, उनमें एक मीज़ान है, एक किताब का मिलना और एक पुल सिरात है। तो ये उस वक्त की दुआ है कि उस वक्त नूर तकसीम किए जाएंगे और बहुत सारे लोगों के नूर जो होंगे वो बुझ जाएंगे। तो ऐसे वक्त में इंसान नूर का मोहताज होगा, क्योंकि घुप अंधेरा होगा और पुल को क्रॉस करना होगा। तो इंसान अपने नूर के लिए दुआएं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में ये दुआ सिखा दी, रब्बना अतमिम लना नूराना वगफिर लना, ऐ हमारे रब हमारे नूर को मुकम्मल कर दे कि उस दिन हमारा नूर ना बुझे, और अल्लाह हमारी बख्शिश कर देना। इन्ना का आला कुल्ली शईन कदीर, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर। तो ये बहुत ज़रूरी दुआ है। और दूसरे जो जिक्र है वो घर से निकलने का है, और ये जिक्र भी हमारी हिफाजत का है। इसलिए कि जब हम ये बात कह देते हैं अपने घर से निकलते वक्त, तो शैतान दूर हट जाता है, इंसान हर आफत से महफूज हो जाता है, और शैतान अपने दूसरे साथी से कहता है तुम इस आदमी पे कैसे मुसल्लत हो सकते हो जो राह पा गया और हर आफत से महफूज कर दिया गया। तो इंसान हर किस्म की, देखिए आप बाहर कितनी आफतें होती हैं, अल्लाह माफ करे, हादसात हैं और बीमारियां और क्या क्या चीजें हैं, तो हर किस्म की आफत से इंसान महफूज है, सेफ हो गया। और दुआ बहुत ही आसान है, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह भी हमें आती है तो तवक्कल तो अल्लाह भी आता है और वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आता है। तो ये मुख्तसर सी दुआ अगर आप घर से स्टेप आउट करते वक्त पढ़ लेंगे तो हिफाजत में आ जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, इस दुनिया की भी आफतों से और आखरत की भी। इंशाअल्लाह ताला आज की रात आप लोगों से सेंट्रल टाइम के मुताबिक 12:30 बजे मुलाकात होगी, कयामुल लैल के लिए। इम्पोर्टेंट रात है, बहुत इम्पोर्टेंट रात है बल्कि, तो इसके लिए आप आज दिन में तैयारी रखिएगा, अच्छी सी नैप ले लीजिएगा ताकि रात को फ्रेश होके आप बैठें और इंशाअल्लाह इकट्ठे हम इस रात को गुजारें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।